नमस्कार, आज हम अखंड ज्योति पत्रिका में प्रकाशित पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख पर चर्चा करने वाले हैं। लेख का नाम है व्यक्तित्व का परिष्कार, मतलब पर्सनालिटी को रिफाइन करना, उसे निखारना।
हाँ बिल्कुल, व्यक्तित्व का शोधन, ये विषय अपने आप में बहुत गहरा है।
पूज्य गुरुदेव इसमें एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं, वो कच्चे लोहे वाला।
हाँ हाँ, कि जैसे खदान से निकला लोहा वो अपने आप में उतना मूल्यवान नहीं होता।
सही, उसे भट्टी में तपाना पड़ता है, पीटना पड़ता है, तब जाकर वो फौलाद या स्टील बनता है, कुछ काम का बनता है।
बिल्कुल, तो गुरुदेव यही कहते हैं कि मनुष्य का जीवन भी कुछ ऐसा ही है, उसे भी परिष्कार की एक तरह की भट्टी की जरूरत पड़ती है।
तो ये परिष्कार, ये शुद्धिकरण, इसी को तप कहा गया है।
हाँ, मुख्यतः इसी प्रक्रिया को पूज्य गुरुदेव तप कहते हैं, और वो कहते हैं कि इसके बिना तो मनुष्य का जीवन मतलब पशु जैसा ही रह जाता है।
पशु जैसा किस मायने में?
मतलब बाहरी रूप तो मनुष्य का है
जी,
पर अंदर से वो शुद्धि नहीं है, वो परिष्कार नहीं है। तो हमें अपने बाहरी यानी बहिरंग और खासकर आंतरिक, अपने अंतरंग जीवन दोनों को सुधारना होता है।
अच्छा, तो ये आंतरिक अशुद्धियां या कमियां हैं क्या समय जिनकी सफाई करनी है?
गुरुदेव इशारा करते हैं हमारे अंदर जमे हुए जन्मों के कुसंस्कारों की तरफ।
कुसंस्कार
मतलब बुरी आदतें, बुरी प्रवृत्तियां।
हाँ बिल्कुल, वो गहरी जमी हुई आदतें, वो सोच के पैटर्न जो हमें नीचे खींचते हैं।
जैसे पशुओं में होता है ना, अपनी इच्छाओं पर, काम वासना पर विवेक का अभाव। या जैसे वो उदाहरण देते हैं कि बिल्ली चूहे को खाती है तो उसे उसके दुख से कोई मतलब नहीं होता, वो संवेदनहीनता।
अच्छा हाँ, तो इंसान को इन सबसे ऊपर उठना है।
बिल्कुल, इन पशुवत प्रवृत्तियों से ऊपर उठना है, और इसी के लिए तप की जरूरत है।
तो फिर तप का सही अर्थ क्या हुआ? क्या सिर्फ उपवास या शारीरिक कष्ट?
नहीं नहीं, वो तो उसका एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। तप का असली मतलब है अपनी पुरानी जो हानिकारक आदतें हैं, जो गलत इच्छाएं हैं, जो कमजोरियां हैं, उनके खिलाफ लड़ना, एक सचेत संघर्ष।
अपने ही खिलाफ, अपनी आदतों के खिलाफ?
हाँ, ये अपने आप से लड़ाई है, अपनी कमजोरियों पर, अपनी उन प्रवृत्तियों पर दबाव डालना जो हमें गिराती हैं, उन्हें बदलने की कोशिश करना, कष्ट सहना सीखना, लेकिन सही उद्देश्य के लिए।
जैसे इच्छा ना हो तब भी किसी अच्छे काम में लगना, या आलस से छोड़ना।
बिल्कुल, जैसे उपवास रखना इंद्रिय निग्रह के लिए, या आराम छोड़कर सेवा करना, ये सब तप के ही रूप है। ये अपने पुराने ढर्रे को तोड़ने की प्रक्रिया है।
गुरुदेव फिर उदाहरण देते हैं कि जैसे आग में तपकर कच्ची ईंट पक्की हो जाती है।
हाँ, और मजबूत हो जाती है। या पानी भाप बनकर बड़े बड़े इंजन चला देता है।
तो वैसे ही तप की अग्नि इंसान के व्यक्तित्व को निखारती है, उसे मजबूत और मूल्यवान बनाती है।
तो हम देखते हैं उसकी नींव में कहीं ना कहीं ये तप ही होता है, आत्मनियंत्रण।
ठीक है, तो तप से बाहरी जीवन सत्ता है, फिर आंतरिक जीवन के लिए?
हाँ, तो आंतरिक जीवन को उन्नत करने के लिए, उसे साधने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है योग।
योग, इसका मतलब आसन प्राणायाम?
वो योग का एक अंग है, पर यहाँ गुरुदेव योग का जो अर्थ बता रहे हैं वो है जुड़ना।
जुड़ना, किससे जुड़ना?
अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। यानी जो कुछ भी श्रेष्ठ है, उत्तम है, जो हमारे आदर्श हैं, जो दिव्यता है, उससे अपने आप को एकाकार करना।
अच्छा, जैसे वो कहते हैं कि लोहा पारस छूकर सोना बन जाता है।
हाँ बिल्कुल वैसा ही, या जैसे कोई गंदा नाला गंगा जी में मिल जाए तो वो भी गंगा जल बन जाता है। तो वैसे ही आत्मा जब परमात्मा के साथ यानी श्रेष्ठता के साथ जुड़ती है तो वो भी दिव्य बन जाती है, उसका रूप बदल जाता है।
तो ये परमात्मा कौन है जिससे जुड़ना है?
इस पर भी गुरुदेव बहुत साफ बताते हैं, वो परमात्मा के दो रूप बताते हैं। एक तो ब्रह्म।
ब्रह्म,
हाँ, वो निराकार सर्वव्यापी सत्ता जो पूरी सृष्टि को चला रही है, विशाल अवर्णनीय, जिसको समझना बहुत कठिन है।
और दूसरा रूप?
दूसरा है परमात्मा, वो ईश्वर का व्यक्तिगत रूप जो हर इंसान के अंदर बैठा है, अंतःकरण में, जिसे हम अपनी श्रद्धा से, अपनी भावना से, अपने आदर्शों से गढ़ते हैं, उसे सींचते हैं, मजबूत करते हैं।
जैसे मीराबाई का गिरधर गोपाल।
बिल्कुल, या जैसे रामकृष्ण परमहंस की माँ काली, वो उनका अपना गढ़ा हुआ अपना साधा हुआ परमात्मा था।
तो ये परमात्मा हमारे अंदर ही है आदर्शों के रूप में।
हाँ, ये असल में हमारे अंदर श्रेष्ठ आदर्शों, गहरी आस्थाओं, अच्छे कर्म करने की इच्छा और सबके लिए भलाई की भावना इसी रूप में प्रकट होता है।
तो योग का मतलब हुआ कि अपनी सोच को, अपनी भावनाओं को, अपने पूरे अस्तित्व को इन उच्चतम आदर्शों के साथ मिला देना।
एकदम सही, उनके साथ एक लय में हो जाना। ये सिर्फ मानना नहीं है, ये जीना है, अपने विचारों और कर्मों को उन आदर्शों के अनुसार ढालना।
तो अगर हम इसे संक्षेप में समझें, तप हमारे बाहरी व्यवहार को ठीक करता है, अनुशासित बनाता
है, हमें सभ्य बनाता है,
और योग हमारे अंदर की दुनिया को, हमारी सोच, हमारी आस्था को उन्नत करता है, संस्कृति का निर्माण करता है।
बिल्कुल, और व्यक्तित्व का पूरा परिष्कार, उसका पूरी तरह से निखरना इन दोनों के मिलने से ही होता है, तप और योग के समन्वय से।
ये तो वाकई बहुत गहरी बात है।
हाँ, पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है। ये जो व्यक्तित्व का परिष्कार है, ये कोई बाहरी चीज या कोई कर्मकांड भर नहीं है, ये तो अंदर बदलने की, रूपांतरण की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक यात्रा है,
जो तप से मिले अनुशासन और योग से मिले जुड़ाव से ही संभव हो पाती है।
बिल्कुल।
इस सारी चर्चा से एक सवाल मन में जरूर उठता है, और शायद सभी को इस पर सोचना चाहिए।
क्या सवाल?
कि हम अपने भीतर किस तरह के परमात्मा को गढ़ रहे हैं, मतलब किन आदर्शों को, किन विश्वासों को, किन गुणों को हम अपनी श्रद्धा से, अपनी ऊर्जा से सींच रहे हैं।
बहुत जरूरी सवाल है।
क्या वो आदर्श हमें सच में ऊपर उठा रहे हैं, या कहीं हम अनजाने में कुछ और ही तो नहीं पोषित कर रहे हैं?
सही, इस पर विचार करना बहुत सार्थक होगा।
बिल्कुल, तो आज के लिए यहीं विराम लेते हैं। ओम शांति।
ओम शांति।